फिर गोपियों के संग में रहने वाले या उन गोपियों के जिन गोपियों के साथ में विहार करते हैं उन गोपियों की कैसी महिमा हो, इसको उन्होंने वर्णन किया। क्वचित पल्लव तलते थे, ये तो कम करे रहा, क्वचित कल्प पल्लव तलपेशु निजुद्ध समकर्षित वृक्ष मूलाशयम चेते गोपोत्संगोपबरहण। पुनः उनके सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं, ये तीन श्लोकों में वर्णन करेंगे। क्वचित पल्लव तलपेशु, यहाँ पर तलपेशु पल्लव तलपेशु ये बहुवचन है। कभी कभी कृष्ण उन गोपालकों के साथ में क्रीड़ा कौशिक में युद्ध करते हैं और उसमें थक जाते हैं तो सखाओं के द्वारा या वृंदा देवी के द्वारा नौ पल्लवों से रचित या नौ वृंत रहित पुष्पों से सुरचित वो पुष्प की पखुड़ियों पर ऐसे ऐसे बहुत से तल्प माने पिछौने होते हैं, पर कृष्ण शयन करते हैं कहाँ, वृक्षों के मूल में। और गोपोत्संगोपबरहणम, गोपों के गोदी को ही उपबरहण तकिया बना लेते हैं और उसमें सो जाते हैं कृष्ण और उनके पैरों को धीरे धीरे संवाहन करते हैं। ये सखा कितना सौभाग्य। और इसे भी ये कि कभी वही युद्ध में शांत होकर क्रीड़ा में थक करके गोप बालक कृष्ण की गोदी में अपना सिर रख करके सो जाते हैं और कृष्ण उनको सहलाते हैं, सिर को कभी चरण भी दबा देते हैं, कभी बलदेव प्रभु जी को ऐसा भी करते हैं। इसलिए कितना इनका सौभाग्य वर्णन किया जाए, जोगी लोगों के लिए संभव नहीं, साधारण भक्तों के लिए भी संभव नहीं, उन गोपों के लिए ही संभव है। किसी को बतला रहे हैं सनातन गोस्वामी में विशेष इनकी टीका में यही, क्वचित पल्लव तलपेशु। यहाँ पर तलपेशु किस लिए कहा गया, यहाँ पर एक ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं कृष्ण, लाखों करोड़ों उनके सखा हैं। तो यदि एक ही तल्प रहेगा, एक ही बिस्तर रहा तो वो कितने लड़के उनको पकड़ सकेंगे, संवाहन करेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसी ऐश्वर्य शक्ति उसी में उनकी जोग माया ने की कि एक एक बालक एक एक जगह कृष्ण की ये पद संवाहन कर रहा है और कृष्ण उसकी गोदी में सिर देकर के सो रहे हैं। एक एक जोग मैंने ऐसा इस बाल्य लीला में भी ये कृष्ण का ऐश्वर्य वहां रहता है, किंतु न तो सखाओं को मालूम रहता है न कृष्ण को मालूम रहता है, माधुर्य के द्वारा ढका रहता है। कोई भी ऐश्वर्य शक्ति ऐश्वर्य नहीं किया, अपने आप जोग माया उनके मन को बात समझकर किसी भी बालक को हृदय में ये न रहे कि मैं इनकी सेवा नहीं कर सका। इसलिए जितने बालक उतने शिष्य बन गए और उतने बालक कृष्ण को अपने निकट से अपने गोदी में उनका सिर रखकर को इनका पद संबान कर इस प्रकार से समझिए कृष्ण हमारी ही सेवा को ग्रहण कर रहे हैं या कृष्ण की सेवा मैं ग्रहण कर रहा हूं। अथच ऐश्वर्य वहां पर कुछ तनिक भी किसी को नहीं मालूम हुआ, किसी बालक ने नहीं देखा ये इतने कृष्ण है, उन्होंने देखा बस एक ही कृष्ण है। इसलिए ब्रज में संपूर्ण रूप से द्वारका और मथुरा से भी बैकुंठ से भी अधिक ऐश्वर्य होने पर योग माया के द्वारा वह ऐश्वर्य ढक जाता है और ये माधुर्य प्रकाशित हो जाता है। कृष्ण ने तो अपना शरीर बढ़ाया, न शरीर काय व्यूह किया, न कुछ किया, किंतु ऐसे हो गया। संवाहनम चक्रु केचित तस्य महात्मना अपरे हत पापमानो दजनै समे विजयन पाद संवाहनम चक्रु केचित केचित पाद संवाहनम चक्रु किसी ने पैर दबाने लगे केचित महात्मना और कोई कोई महात्मा सखागो अपरे हत पापमान और दूसरे पाप रहित होकर बेजनों के द्वारा उनको बीजन कर। अब ये पाप रहित का तात्पर्य क्या है ये बतलाएंगे पीछे। इस प्रकार से कृष्ण मल्ल युद्ध कर रहे हैं, पल्लव रचना कर रहे हैं, पल्लों की शैया रचना कर रहे हैं। उपाधान बना रहे हैं कैसे, वृंत रहित कमल के पुष्पों को, गुलाब के पुष्पों को, या और कुंद और ये सब पुष्पों को, उसी की तकिया बना रहे हैं, उसी का बिछौना बना रहे हैं। इसी समय में साहजिक परम स्नेह, साहजिक परम सहज रूप में स्नेह कृष्ण के प्रति उन गोपालकों का है, इसलिए कृष्ण का थोड़ा भी परिश्रम देकर के ये अत्यंत कातर हो जाते हैं। उस परिश्रम को दूर करने के लिए, कृष्ण की क्लांति को दूर करने के लिए व्यग्रता के साथ तरह तरह के परिचर्या करने लगते हैं। यही चीजें पहले गुरु जी के समीप में सीखना होगा। यदि कोई सेवक ऐसा हो जो गुरु जी की लौकिक शब्द बंधुवत समझ कर और थोड़ा सा परिश्रम करने का श्रम उनको हो तो अनुभव करके उनकी सेवा करने के लिए आतुर और व्यग्र हो जाए, तब तो कृष्ण में वो लगेगी। इसलिए गुरु और वैष्णव में ये भावना आएगी तो धीरे धीरे कृष्ण में लगेगी। If anyone wants to serve Krishna solely, he will have to serve solely to Gurudev and Vaishnavas, like Shiksha Guru are more qualified than him, Ekantik Vaishnava. Practicing, it will go to Krishna. Sab Krishna mein mamata aayegi. Isliye Guru Vaishnava mein mamata nahi aane se lakh koshish karo. Krishna mein mamata nahi aayegi. कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं, प्रेम में एकन्नी दुवन्नी चौवन्नी अठन्नी बरहन्नी और रुपया होता है ना? समझो इस चीज को, एकन्नी प्रेम, दुवन्नी प्रेम, तीनन्नी प्रेम, चौवन्नी अठन्नी। हम इसमें से यदि 100 भाग भी प्रेम का करें तो उसका 100वां भाग भी किसी को नहीं देंगे। किसको देंगे? गुरु वैष्णव और कृष्ण। यदि आपने इस सहज प्रेम को, भक्ति को और उस ममता को जहां कहीं दे देंगे तो वो कृष्ण से बढ़ करके निकल जाएगा हाथ से। इसलिए खबरदार ऐसा मत करो, इस चीज को सोचो। वैष्णव लोग रूप गोस्वामी इत्यादि माधुकरी करते थे, वो भी रात में, जो किसी से संबंध न हो, एक पेड़ के नीचे रहते नहीं थे। किस लिए? उस पेड़ में आसक्ति ना हो जाए। फिर सोचेंगे ये पेड़ को बंधवा दें और फिर क्या करेंगे? यदि कोई आएगा तो उसे लड़ेंगे, ये मेरा पेड़ है, मैं इसके अंदर रहता हूं। तो वो आसक्ति कहीं भी यदि रही तो कृष्ण की आसक्ति से तो निकल करके जाएगी। इसलिए गोपियों का कहीं भी प्रेम इत्यादि नहीं, न पा रहे हम महा निर्वध संयुजान प्रसाद कृत्या माँ भजन गिरजर देह सिंखला। सारी आसक्तियों को, माता पिता पुत्र भाई बंधु स्वजन परिजन, काट दो, और काट करके क्या करो, पहले गुरु में लगाओ। यदि गुरु भी वैसे ही किंतु होना चाहिए, गुरु भी साधारण नहीं, वो ऐसे होने चाहिए गुरु को जो कि उस प्रेम को एकत्रित करके और राधा कृष्ण के जीवन में चरण में दे। इसलिए ममता को कहीं मत लगाओ, किसी जगह भी मत लगाओ ममता। गोपियों की ममता कहाँ थी? माता में थी, पिता में थी, किसी में थी? अपने केशों में थी, अपने किसी भी खाने पीने में थी? उनकी सारी ममता कहाँ थी? देह दही, कृष्ण स्वयं कहते हैं देह दही, जो कुछ क्रियाएं हैं सब कृष्ण के लिए। वो कृष्ण के बिना जीवित कैसे हो रही हैं, ये था लगाना संभव नहीं है बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के लिए। क्यों? इसी का नाम साधन है, साधन अवस्था में। उनका नहीं, गोपियों का नहीं कह रहा, उनको जो फॉलो करेंगे अपनी सारी आसक्तियों को ममता को बटोर करके गुरु जी को, और गुरु जी क्या करेंगे उसको राधा कृष्ण में लगा, भजन में ये आसक्ति रहे, फिर भजनीय में आए। भजनीय माने गुरु जी, शिक्षा गुरु इत्यादि, वैष्णव और कृष्ण है। इसलिए ऐसा कभी मत करो ये हमारे स्नेह की अर्धल्ली अथवा पौनी अथवा एक सौवां फ्रैक्शन कहीं भी निकल करके दूसरी जगह में पहुंच जाए, ऐसा मत करो। इसका नाम है भजन। जहां जहां पर आ सकती है उसको निकालो, निकाल करके क्या करो, सखाओं का देखो, एक क्षण भी कृष्ण के बिना रह नहीं सकते हैं। वो समझते हैं कि कृष्ण को अब क्या जरूरत है, गुरु जी कहीं बाहर से आए, कुछ परिश्रम करके आए। साधारण सेवक लोग क्या करेंगे, गुरु जी क्या सेवा करो, उसे थोड़ा सा और रहेंगे, वो कुछ समझेंगे गुरु जी की क्या जरूरत है। हमारे गुरु जी के एक सेवक था, गुरु जी आएंगे समझ जाता था कि गुरु जी को ये जरूरत, कहीं कैसे समझता था, गुरु जी का थोड़ा सा होश सूखा हुआ कुछ ऐसे हुआ, वो समझ जाए गुरु जी को पानी की जरूरत, आनंद था। हाँ, पहले था पीछे गड़बड़ हो गया, एकदम समझ जाता। हम लोग को समझने में देरी होती थी और वो समझ जाता, पंखा की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, भोजन में क्या इनकी जरूरत है, किस चीज में टेस्ट है, क्या है नहीं है, इनके लिए क्या उपयोगी है, पढ़ा लिखा को खबर नहीं। ऐसे ही जो लोग ये समझेंगे हमारे गुरु जी हमारे आराध्य क्या चाहते हैं, इस चीज को जो नहीं समझा अभी बक है, से नहीं, सेवक नहीं, बक माने बगला। हमको ये देख करके चलना है, अभ्यास करना है, हमारी सारी असक्ता ममता इत्यादि को कैसे एकत्रित करके हम गुरु जी के चरणों में दे सके। राधा कृष्ण में तो दे नहीं सकते, उनसे संबंध नहीं है, जो गुरु जी को नहीं दे सकता वो कृष्ण को कभी नहीं दे सकता है, कृष्ण कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसलिए इस पर ध्यान रखो, गुरु जी क्या चाहते हैं। श्री चैतन्य वो मानसिक रूप में क्या चाहते हैं, गुरु जी को क्या जरूरत है, गुरु जी को कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कोई चीज की जरूरत है, कोई चीज। किंतु भक्ति देने के लिए, भक्ति करने के लिए अनर्थ बहुत से ऐसे हैं जो कि इसमें बाधा देते हैं। इसलिए गुरु चाहते हैं जैसे अनर्थों को छोड़ दे। अनर्थ क्या, विषयों में आसक्ति, दूसरे लोगों में आसक्ति, इन बच्चों को कृष्ण के अतिरिक्त कोई चीज अभीष्ट है, अपने माता पिता का, भाई बंधु का, भाई का, संसार में रुपया पैसा कोई चीज है, इसलिए उनका अनुसरण हमको करना पड़ेगा। वो तो सिद्ध हैं और हम लोग अभी साधक, इसीलिए अभी से ऐसा करें, सारी जितनी आसक्ति संसार की है सब गुरु जी के चरणों में हम समझेंगे, उनके भाव क्या है, क्या चाहते हैं। राधा जी में और गोपियों में वैशिष्ट्य क्या है राधा जी का, वो कृष्ण की मनोभावना को इतना जानती हैं, कि उनके लिए कृष्ण की इच्छा समझ करके मन कभी करती हैं, कभी क्रोध करती हैं, कभी ऐंठती हैं, कभी बड़ी प्रसन्न होती हैं, कभी स्वाधी भर्तृका नायिका बन जाती हैं, कभी कुछ करती हैं। इसलिए बस कृष्ण को प्रसन्न करना ही है, ऐसा कोई नहीं है विश्व में, सर्वशक्ति इत्यादि योग माया में भी ऐसा नहीं है जैसा ये राज्य है। इसलिए इन लोगों का अनुसरण करके हम लोगों को भी इसी प्रकार से इन सखाओं का चरित्र अपने जीवन में लेना पड़ेगा। सखाओं का क्या इससे भी और आगे की, इसलिए कह रहे हैं सहजिक स्नेह। स्नेह का लक्षण क्या है? स्नेह का लक्षण चित्त को द्रवित करता है। चित्र को द्रवित करता है किस तरह से? कृष्ण को देख करके कंस तो क्रोधित हो जाता है और सखाओं का चित्त विगलित हो जाता है। क्यों? ममता। कंस में ममता नहीं है और सखाओं में स्नेह तक है, इसलिए स्नेह से उनका चित्त द्रवित हो जाता है। तनिक भी वो कृष्ण के लिए कुछ भी अपना लिए विचार नहीं, न अपना खाना, न पीना, न देह, न दैही, न कष्ट, उनके कहीं कुछ है ही नहीं है। कृष्ण को जो जितना स्नेह करता है उससे भी ममता उनकी उतनी अधिक होती है। ये एक और लक्षण क्या बतलाया? कृष्ण से जिनकी जितनी ममता है उसी प्रकार से यदि कोई साधक होगा तो जिनको ममता है उनके प्रति इसकी भी ममता होगी। जैसे श्रीमती राधिका जी, कोई विपक्ष है, कोई तटस्थ है, कोई सुहृद है, कोई स्वपक्ष है। स्वपक्ष कौन है और विपक्ष कौन है? राधिका जी के प्रति सब पूर्ण रूप से समर्पित होकर राधिका जी के सुख में सुख, दुख में दुख, ये स्वपक्ष, उनके अनुसार में ममता उनकी होगी। इसका आधार क्या है? आधार यही ममता है, मैं उनकी हूं और वो मेरे हैं। दो प्रकार की ये ममता है, एक है तदीय और एक मदीय। चंद्रावली जो विपक्ष की हैं उनकी है मैं तदीय हूं, इसलिए वो विपक्ष में गई। और राधिका का क्या है? कृष्ण मेरे हैं, यह है मदी। और बीच में दो हैं, एक सुहृद है और तटस्थ, जिनमें तदीय भाव कुछ कुछ है, मदीयता भी कुछ कुछ है, किंतु तदीयता अधिक है, वो हो गई विपक्ष की संगिनी तटस्थ। और जिसमें मदीय भाव है अधिक किंतु कुछ कुछ तदीय भाव भी है, तो ये क्या हुआ? ये सुहृद हो गया। सब कुछ ममता के ऊपर में निर्भर है, इसलिए अभी से क्यों नहीं हम लोग ममता कृष्ण पर और कृष्ण के प्रियजन जो हैं उस पर ममता सारी ढाल। ये ममता कैसे आएगी? कैसे आएगी? आएगी कैसे? यदि हम ये सोचें, हम इस चीज को समझ लें कि हमारे सब प्रकार से भरण पोषण करने वाले, हमारे एकमात्र सबके गति यही हैं, इनके अतिरिक्त और कोई हमारा जगत में बंधु नहीं है, और हमको ठग लेंगे, कष्ट दे सकते हैं, इसलिए संपूर्ण रूप से यही हमारे लौकिक बंधुवत हमारे प्रिय हैं, इनसे बढ़कर के कोई नहीं है, ऐसा संबंध उसके साथ में हो और ऐसा गाढ़ विश्वास हो तभी ऐसा संभव है, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो कृष्ण प्रेम देने जा रहे हैं उसके प्रति कोई ममता नहीं आएगी, जो दो रोटी चुपड़ी हुई खिला देते हैं उसके प्रति ममता चली आएगी, जो दो पैसे दे देंगे ना, ये ब्रह्मचारी इसमें से बहुत से ऐसे हो सकते हैं, हम इतना परिश्रम करके उनको भक्ति राज्य में ले जा रहे हैं, किंतु जहां से किसी ने 5-10 रुपया महीने में उनको दे दिया या 1,000 रुपया दे दिया महीना, तो हमको छोड़ करके चले जाएंगे, उनके पास में रुपये का मूल्य अधिक है, वो समझते कि ये सब कुछ, इसलिए छोड़ करके चले जाते हैं। गुरु को छोड़ करके कितने चले गए, जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास भी छोटा काला कृष्णदास उसने देखा कि महाप्रभु हमको एक लड़की इतनी सुंदरी दे देंगे देंगे ये नहीं दे सकते महाप्रभु, और ये कितनी सुंदरी लड़की हमको दे रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, इनके साथ में कितने आराम से रहेंगे। उस समय वो लग गए और छोड़ दिया महाप्रभु को, छोड़ दिया ना। किस लिए छोड़ा? ये हमारा ही तहजी है, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की से हमारी शादी कर रहा है और इतना रुपया पैसा दे रहा है, स्वच्छंद गति से हम रहेंगे, डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, महाप्रभु जी तो कहेंगे जब थोड़ा सा गलती हो जाएगा तो कुछ कर देंगे, किंतु यही नहीं सोचता जो कृष्ण प्रेम देंगे। इसलिए ऐसे ही लौकिक दृष्टि से जो गुरु तत्व का विचार करते हैं और दूसरों का उपकार समझते हैं, अधिक क्या होगा, उनके प्रति ममता लाएगी, एक लड़की के प्रति हो जाएगी, गुरु जी के प्रति नहीं, गुरु को छोड़ छाड़ करके चले जाए। इसलिए आप लोगों का ऐसा कभी ना हो, सावधान रहेंगे अपनी सारी ममता को, उसमें से एक कण भी दूसरे को मत दीजिए, गुरु जी को दीजिए, और गुरु वो कृपालु हैं, राधा कृष्ण के चरणों में दे देंगे। इस तरह से भजन सहज होगा और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये सखा लोग सहज स्वाभाविक स्नेह से कृष्ण का थोड़ा सा भी परिश्रम देख करके आकुल और व्याकुलित हो जाते हैं सेवा करने के लिए। ऐसे ही होना चाहिए। कभी कभी हम चिंता करते हैं, कोई सेवा करने के लिए गया, गुरु जी का ऐसा नियम था, हमने देखा, यदि कोई सेवा में कोई गया और जब तक नहीं आएगा तब तक जगे रहेंगे, जब आएगा खाया पिया कि नहीं, इसके क्या कष्ट है, ये सब पूछेंगे, जिस काम के लिए गए हुए हैं उसको बेचे में पूछेंगे, और जब तक नहीं होगा, जब तक उसको ठीक से खाना पीना इत्यादि सब प्रकार की व्यवस्थाएं है, तब तक नहीं सोएंगे। अच्छा, कितने लोग ये समझते हैं कि गुरु हमारे लिए इतना चिंता करते हैं। एक पिता को जितनी चिंता नहीं, उससे लाख गुना चिंता होती है यदि शुद्ध गुरु हो, किंतु सेवक ये नहीं समझ पाते। कोटि कोटि मातृ से अधिक उनको स्नेह होता है। इस स्नेह को समझना बड़ा भारी कठिन है, जो समझेगा तो उसको तो गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा। जैसे हमारे गुरु जी का नाम लेते ही अपने प्रभुपाद कहते हुए खंडन कर ले, बोल नहीं पाते। इसलिए इन सबको विचार करके भजन राज्य में प्रवेश करना, इनके विचारों को ग्रहण करना चाहिए साधन अवस्था में। सुनेंगे ही नहीं तो क्या होगा? इसलिए इन चीजों को श्रवण करना चाहिए, उसको उसमें प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करनी चाहिए। सही परम प्रेम संपत्ति महिमा, गोपो की प्रेम महिमा का प्रतिपादन कर रहे हैं। पाद संवाहनम चक्रु, कोई कोई महात्मा, महात्मा माने क्या, महान आत्मा, आत्मा माने प्रिय भी होता है, महान प्रेम वाला व्यक्ति, कृष्ण के प्रति भक्तिमान, कृष्ण के प्रति स्नेह ममता रखने वाला व्यक्ति, ये महात्मा है। इसलिए कभी कभी कृष्ण को भी महात्मा बतलाया गया। इसलिए यहां पर महात्मा का यही पाठ करें, कौन महात्मा, सखा गोप लोग, जिनके जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है वही महात्मा है, उसकी आत्मा महान है। देखिए मधुमंगल जी और कृष्ण एक जगह बैठे, कृष्ण कहा जी भाई सखा तुम कहाँ था? तो मैं गुरु जी के पास में गया था। तो गुरु जी के पास में किस लिए गया? तो मैं ज्योतिष सीखने के लिए गया था। हमारे जी जो गुरु जी हैं जो गर्गाचार्य, उनके समान विश्व में कोई भी ज्योतिष विद्या नहीं जानने वाला, उनके पास में गया तो सिखाया, तो हाँ बहुत दिनों से सीख रहा था, थोड़ा थोड़ा भी सीखा, पूरा तो नहीं सीखा। तो क्या सीखा? तो हम किसी के मन की बात जान लेते हैं। मन की बात जान लेता है तुम, तो तुम हमारे मन की बात बतलाओ। तो अच्छा दक्षिणा तो चाहिए, बिना दक्षिणा का नहीं बतलाऊंगा, तब मैं थोड़ा सा बतला रहा हूं। देखो एक सरोवर है, सरोवर में एक राजहंसी, राजहंसी समझते हैं, राजहंस, राजहंस वो विचरण कर रही है, इधर से उधर तैर रही है, उसके साथ में कुछ और भी हैं, और तट पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति उस राजहंसी को पकड़ना चाहता है, बहुत चेष्टा करता है, उसके हाथ ही में नहीं जाती। तो कृष्ण कहते तू कैसे हमारे मन की बात जान गए, जो समझे सो समझे जे क्या बात है। मधुमंगल ऐसे निपुण हैं जो अपने सखा की सारी बातों को, हृदय को, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, राजहंसी अब अधिक नहीं बतलाएंगे, अब समझ लेंगे। कृष्ण चाहते हैं राजहंसी को पकड़ने, मधुमंगल कहने के साथ साथ में, अरे तुमने तो सचमुच में ज्योतिष विद्या का पठन पाठन किया है, वो तो पकड़ में कैसे पकड़ में आएगी, तो देखो उसको शाखा के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है, बिना शाखा की सहायता से लाख चेष्टा करते करते मर जाओ वो पकड़ में नहीं आएगी। तो वो विशेष शाखा क्या है, ये सब सखा लोग हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई पद संवहन कर रहा है, आ कोई ऐसी भावनाओं के द्वारा कृष्ण की सेवा करता है, ये कौन श्रेष्ठ है, पानी पिलाना वो नहीं। इसलिए ये जो मानसिक जो है रस, इसके द्वारा जो सेवक, जो सखा, जो सखी, कृष्ण की मनोभीष्ट पूर्ण करने वाले लोग ये लोग हैं, उनकी सेवा सर्वोत्तम होगी। ये सब कैसे होगा, साधन के समय में ऐसा प्रयत्न करना होगा। इसलिए हमारी एनर्जी कहीं इधर उधर में मत जाए, न जाए, ऐसे काम करना चाहिए जिससे हमारा सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं वो सब साधन हो, जिसके बैठ करके कुछ चिंतन करें, हम क्या कर रहे हैं इस पर विचार करेंगे। तो इस तरह से कोई कोई पद संवहन कर रहा है, अच्छा पद संवहन कैसे करता है, कृष्ण की मनोभावना जान करके और उनकी सेवा करता है। और तो सब जो वर्णन किया है वो ठीक ही है, कैसे सेवा कर, जब पद संवहन कर रहा है तो कृष्ण आंख बंद कर रहे हैं, अच्छा लगता है ना, कुछ सोने का अभिनय करते हैं, तो सुनी तो आते नहीं, तो वो क्या कहते हैं, कोई अपनी बनाई हुई बड़ी सुंदर सरस संगीत उनको सुनाते हैं धीरे, जैसे लोरी का संगीत होता है, कौन सी लोरी सुनाएंगे, जो कृष्ण की गोपियों के सहित, विशेष करके राधा सहित जो परस्पर विहार की बातें हैं उन्हीं का उसमें दे करके पूछ, और उसको ऐसे करते हैं जैसे कोई दूसरा समझ न सके, बस कृष्ण ही समझे, कृष्ण सुन करके बड़े आनंदित होते हैं, ये विश्राम उनका होता है। ये सनातन गोस्वामी आगे वर्णन करेंगे इसी को, यही इसका मूल सब चीज है, कैसे वो प्रसन्न होंगे, पासा बांध से भी होंगे, खिलाने से भी होंगे, और इन भावनाओं से युक्त होकर के संपूर्ण रूप से जो कृष्ण की सेवा कर सके उससे वो अधिक प्रसन्न होंगे। इसलिए सब सखाओं में कोई सखा, कोई नित्य सखा, कोई सुहित सखा, आ कोई प्राण सखा, आ कोई प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म सखाओं में सुबल, सिदाम, सुबल, मधुमंगल, अर्जुन, उज्जवल, अर्जुन माने ये द्वारका वाले मत मोने, ऐसे है आठ हैं विशेष, जो उनकी मन की भावनाओं को जान करके वैसे ही सेवा करते हैं। ये सर्वोत्तम क्यों, कृष्ण के भावनाओं को संपूर्ण रूप से जान करके वैसे ही सेवा करते हैं। कभी कभी कृष्ण को भी सजा देंगे राधिका उनकी भावना के अनुसार, कभी कोई स्वयं ही राधिका से कृष्ण की इच्छाओं को इस प्रकार से पूर्ण करते हैं। तद द्वारा बाल लीला के बीच में भी ऐश्वर्य का उसको जो बतलाया था ना, एक लड़का उनका पद संवहन कर रहा है और वहां करोड़ों लड़के, वहां पर बहुवचन है, बहुवचन के द्वारा बहुत से तल्प हो गया और बहुत से सखा लोग अलग अलग प्रकोष्ठों में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और समझिए मैं ही केवल कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ और कृष्ण हमसे ही बात कर रहे हैं और मैं कृष्ण को सुला रहा हूँ, लोरी सुना रहा हूँ, थपथपी दे रहा हूँ इस प्रकार से उनको। इसलिए ऐश्वर्य लीला में भी माधुर्य की प्रबलता है। परमेश्वर जो प्रकट होने पर भी बीच में देंगे आगे इस चेष्टितः, यहाँ पर इस चेष्ट में ऐश्वर्य, इसकी जो चेष्टा है ऐश्वर्यमयी, उसके द्वारा ये पाप संवाहन कोटि कोटि लड़के कोटि कोटि प्रकोष्ठ में उनकी सेवा कर रहे हैं। सभी समझ हैं मैं अकेले ही सेवा कर, और कृष्ण भी ये नहीं समझते हैं जो हम लाख लाख हो गए। कहते हैं कि लाखों लाखों सेवक कर रहे हैं वहां सखा लोग और किसी में संघर्ष क्यों नहीं होता। कहते तुम हट, हम सेवा करें, संघर्ष होगा, मन भी खराब हो जाता है। देखो तो यही ये सेवा कर रहे हैं गुरु जी के, मैं सेवा नहीं करता, इसलिए उसके प्रति ईर्ष्या होगी। और यदि लौकिक कोई व्यापार रहा जो गुरु जी का पापट यही केवल देखता है, दूसरा हम लोग नहीं देख पाते, तो और भी हो जाएगा। इसलिए वहां पर संघर्ष होने की संभावना थी, किंतु संघर्ष क्यों नहीं, कृष्ण ने ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा लाखों रूप धारण करके और सबकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, किंतु किसी को भी मालूम नहीं होता योग माया के प्रभाव से। और सभी लोग ऐसा समझते हैं कि कृष्ण हम ही को इतना प्यार करते हैं, दूसरों को नहीं। गुरु जी की भी ऐसी है, गुरु जी के सेवक भी ऐसे समझते हैं कि हमको बहुत प्यार करते हैं। कोई उनको भिक्षा चाराना पैसा दिया, कहिए आज तक ऐसा कोई हमको नहीं दिया इस प्रकार से तुमने भिक्षा करके दिया। वो समझता कि वाह गुरु जी हमारे ऊपर में प्रकट होते हैं। इसी तरह से सबकी सेवा यथा योग्य ग्रहण करके और उसको ये रखते हैं कि हमारी ममता तुम्हारे अंदर में है, हम तुमको अधिक प्यार करते हैं। गुरु जी में भी ये विशेषता थी।